आरवी ने शान की परेशानी की वजह समझते हुए उसको समझाने की कोशिश की। शान खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। ठीक ही कह रही थी वो, अंशु में उसकी जान बसती थी और आज पहली बार अंशु को खुद से और घर से दूर कहीं अकेले भेजा था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था, नर्वस था, अंशु की फिक्र हो रही थी उसे। पर यह भी सच था कि आज नहीं तो कल अंशु को उस घर की चारदीवारी और अपने परिवार से दूर आकर दुनिया को फेस करना ही था। शान ने गहरी सांस छोड़कर खुद को सामान्य किया, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आगे कॉर्नर पर उतार दूं तुम्हें, कुछ देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा, तुम उसके साथ चली जाओगी या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। आपको कहीं जाना है? अगर जल्दी है तो मुझे कॉर्नर पर ही उतार दीजिएगा, मैं कैब लेकर घर चली जाऊंगी। और अगर आपके पास वक्त हो तो आज जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आरवी ने फिर से उसको याद दिलाया। आज मेरे पास वक्त नहीं है तो कभी और करना अपनी बात, और कैब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ड्राइवर को कह दिया है मैंने, वो आ जाएगा तुम्हें पिक करने। और आगे से भी अगर कहीं भी जाना हो तो गाड़ी से जाना, ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाना, अकेले कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आरवी मायूस हो गई और धीरे से हाँ बोलकर खिड़की से बाहर देखने लगी। शान ने ड्राइव करते हुए तिरछी निगाहों से उसे देखा और मन ही मन बोला, जब तक मैं तुम्हारे उस भागे हुए धोखेबाज होने वाले पति के बारे में सब पता नहीं लगा लेता, तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अकेले कहीं ना जाओ। तुम्हारी बात अभी नहीं सुन सकता मैं, पहले मुझे उस कमीने को ढूंढना है जिसने पहले तुमसे शादी वाले दिन ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब तुम उससे दूर जा चुकी हो तो फिर से ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। जानना है मुझे कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे अतीत में कि वो तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है, तुम उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हो जो आज इस लड़की के साथ है तो कल किसी और की बाहों में समा जाए। फिर शादी वाले दिन वो तुम्हारे बारे में वो सब क्यों कह रहा था? कुछ तो है जिससे तुम खुद भी अनजान हो, पर वो सब जानता है, इसलिए सच्चाई तो मैं जानकर रहूँगा पर उससे, तुमसे नहीं। शान यही सब सोच रहा था। उसने कल ही कार्तिक से विहान के बारे में बाकी सब बातें पता लगवाने को कहा था, साथ ही कॉलेज में जाकर भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था। वो जानना चाहता था वो लड़का जो कॉलेज में आरवी को परेशान करता था वो विहान ही है या नहीं। अगर वही है तो कॉलेज में सबके सामने उसको रिजेक्ट करने के बाद कॉलेज खत्म होते ही ऐसा क्या हो गया कि वो उससे शादी करने को तैयार हो गई? शादी के दिन ऐसा क्या हुआ कि विहान ने उसको सबके सामने बेइज्जत करके छोड़ दिया? बहुत से सवाल थे जिसके जवाबों की तलाश थी उसे, जिसके लिए उसका विहान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। कॉर्नर पर जाकर उसने गाड़ी रोकी, तब तक ड्राइवर वहाँ पहुँच चुका था। आरवी गाड़ी से नीचे उतर गई और दूसरी गाड़ी में जा बैठी। दोनों दिलों में उलझन लिए दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। कुछ देर बाद शान ने ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी रोकी और अंदर चला आया। स्टाफ उसको गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे और वो हमेशा की तरह रौबदार अंदाज में आगे बढ़ रहा था। वो जैसे ही कैबिन का गेट खोलकर अंदर आया, सामने किसी को देखकर चौंकते हुए बोला, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो शूट पर होना चाहिए था। आवाज़ सुनकर वो शख्स उसकी तरफ पलट गया। वो कोई और नहीं बल्कि रेहान ही था जो गुस्से से उसको घूरने लगा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शान की भौहें तन गईं। उसने हल्के गुस्से से कहा, सुनाई नहीं देता? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ क्या कर रहा है तू और मुझे घूर क्या रहा है? तू कल उस होटल गया था ना? रेहान ने उसको घूरते हुए ही सवाल किया। उसका सवाल सुनकर शान के भाव एक पल को बदले, फिर उसने वापस उसी कोल्ड लहजे में जवाब दिया, किस होटल की बात कर रहा है तू? शान, ये नाटक उसके सामने करियो जो तुझे जानता ना हो। मैं बचपन से तेरे साथ हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तेरी परछाई देखकर बता सकता हूँ कि सामने तू है या कोई और। उस फोटो में तू ही है ये मैं जानता हूँ। तो सब सच सच बता दे मुझे कि क्या कर रहा था तू कल वहाँ, क्यों गया था तू वहाँ और उस गिरगिट निया से क्यों मिला था? रेहान ने उस पर भड़कते हुए सवाल किया। वहीं शान एकदम सहज बना हुआ था। वो जाकर अपनी चेयर पर राजाओं की तरह बैठ गया और तीखी मुस्कान के साथ उसको देखते हुए बोला, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। अगर तू मुझे नहीं पहचान पाता तो मुझे हैरानी होती। खैर, तू बेवजह ही इतना हाइपर हो रहा है। मैं वहां गया जरूर था पर अपने किसी काम से। उस निया से गलती से टकरा गया था, तभी शायद किसी ने हमारी तस्वीरें खींच ली। लेकिन इसमें भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फोटो में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने सब सच सच उसको बता दिया हो। वहीं उसकी बात सुनकर रेहान उसको और बुरी तरह घूरने लगा और दांत पीसते हुए बोला, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? जितना स्मार्ट तू खुद को समझ रहा है ना, उतना है नहीं। किसी झूठी कहानी सुना रहा है तू मुझे? जैसे मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, तो क्या कर सकता है और क्या नहीं सब जानता हूँ मैं।
तेरा उसी होटल में जाना जहां निया गई थी, उससे टकराना, तुम दोनों के साथ में तस्वीरें खींचना, उनका न्यूज तक पहुंचना और उन फोटोज में तुम्हारा चेहरा ना देखना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। तेरी सोची समझी चाल है ताकि तू उस निया को टारगेट कर सके और उसके सहारे अर्जुन और उस ठाकुर को नीचा दिखा सके। सब जानता हूँ मैं, इसलिए मुझसे झूठ कहने का कोई फायदा नहीं है, समझा तू? अब की बार शान ने भी गुस्से में कहा, जब सब जानता है तो यहाँ आकर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। उसका गुस्सा देखकर रेहान ने अब आराम से उसको समझाने की कोशिश की। देख शान, मैं तेरा दोस्त हूँ, जो कहूंगा तेरी भलाई के लिए कहूंगा। तू बदला लेना चाहता है तो ठीक है, ले बदला, मैं हूँ तेरे साथ। पर अगर तू उसके लिए निया को बीच में लाएगा तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मैं तुझे पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, उस निया से दूर रहे। तुझे अमरजीत ठाकुर को बर्बाद करना है तो मैं दूंगा तेरा साथ, पर निया को मोहरा मत बना, वो फिर से अगर तेरी जिंदगी में घुस गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। भूल मत, तेरी शादी हो चुकी है, तेरे उठाए हर कदम का असर भाभी पर भी पड़ेगा। निया का सहारा मत ले, वो तेरा और भाभी का रिश्ता बर्बाद कर देगी। तू अभी उसकी जिद है, फायदा है उसका अभी तेरे साथ रहने में। वो इतनी आसानी से तुझे किसी और का नहीं होने देगी, दूर रहे उससे, क्योंकि जैसी वो है अगर उसको भनक भी लगी कि अब तेरी शादी हो चुकी है तो वो तुझे नहीं भाभी को टारगेट करेगी। मैं किसी को मोहरा नहीं बना रहा, वही तड़प रही थी मुझसे मिलने के लिए, मैं उससे नहीं किसी और से मिलने गया था वहां। पर जब वो खुद आई थी मेरा मोहरा बनने तो मैंने भी एक छोटी सी चाल चल दी, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझे अपना बदला लेने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। मैंने बस उसको एक छोटा सा डेमो दिखाया है कि अगर मेरे पीछे भागेगी तो इस बार तो बस उससे चंद सवाल पूछे गए हैं, अगली बार अगर मुझसे मिलने की कोशिश की तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर उसकी बेवकूफी के वजह से अमरजीत ठाकुर की मुश्किल बढ़ गई है, बस यही चाहिए था मुझे। बर्बाद तो मुझे करना है पर सिर्फ अमरजीत ठाकुर को नहीं, उसके पूरे परिवार को, और निया भी उसके परिवार का हिस्सा है, तो मेरे वार से बच तो वो भी नहीं पाएगी।
शान की आंखों में जुनून और नफरत साफ छलक रही थी। उसकी बात सुनकर अब रेहान ने कुछ परेशान होकर कहा, जो भी करियो सोच समझ कर करियो और बिना मुझे बताए तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेरा कोई भरोसा नहीं है। उन्हें बर्बाद करने के जुनून में तो इतना अंधा हो चुका है कि खुद को और भाभी को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं नहीं चाहता कि अतीत में जो हुआ उसका साया भी भाभी या तेरे रिश्ते पर पड़े। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, वो अंशु की माँ है बस, इसलिए मेरे किसी कदम का असर उस पर नहीं पड़ेगा और अंशु को मैं इन सबके बीच आने नहीं दूंगा, शान ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। तो रेहान कुछ पल उसको देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, कब बढ़ेगा तू अपनी जिंदगी में आगे? भाभी जैसी लड़की किस्मत वाले को मिलती है और तू है कि अपने अतीत को अपने दिलो दिमाग पर हावी किए बैठा है। डरता हूँ मैं कहीं इस बदले के चक्कर में तू अपने साथ साथ भाभी को भी हर्ट ना कर ले। निया वो इच्छाधारी नागिन है जो एक बार फिर तेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है, वो तेरी जिंदगी में जहर घोल देगी और मैं चाहता कि अब तेरी जिंदगी में खुशियां दस्तक दे, पर उसके लिए तेरे अतीत के चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके अलावा बस एक ही रास्ता है, अगर तुझे भाभी से प्यार हो जाए तब शायद तू अतीत की उन खाइयों से बाहर आ सके। बस तू अपने इस बदले के खुद को या भाभी को नुकसान ना पहुंचा बैठे। वो अब उठकर खड़ा हो गया, शान अपने काम में लगा रहा, वो चला गया तो शान ने निगाहें उठाकर उसको देखा, फिर वापस काम में लग गया।